películas y vas. आठ पांच छह सिर्फ तो प्रातः क्लास चल रहा था बात चल रही थी जिनको भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है उन्हें के अलावा और कोई रथ नहीं ले सकते और वो रथ बदली भी नहीं हो सकता आठ और छह छठ की बारी का दूसरे पेज में बताया ऐसे नहीं है कि दूसरे कल्प में गुजरा हफ्ते तरफ चला जाऊंगा नहीं कहते हैं क्या शिवबाबा भारत में एक ही रथ में आवेंगे रथ बदलेंगे नहीं हाँ ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती तुम आत्मा इन आदर्श द्वारा सुन रहे हो और बाबा इस मुख द्वारा बात करते हैं क्या बात करते हैं पहली बात करते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूं सन्यासी लोग तो कह देते हैं शिवो हम तत्व सारी बात ही बिगाड़ देते बाप तो बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं बच्चों को एडॉप्ट करते हैं मीठे बच्चों अब फिर से पांच हजार वर्ष बाद में आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए आया हूं तुम कितनी बार पतित से पावन फिर पावन से पतित बने कहते हैं बच्चे बाबा अनगणित बार बने कहानी बाप की कितनी अच्छी है बाप की बताई हुई कहानी है रू रेहन होती रहती है रूहों से रू रेहन होती है सुप्रम रू से वार्तालाप चलता रहता है तो बच्चों को आहत देते हैं तुम अपने सुखधाम को भूल गए तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है तो बाप बैठ समझाते ये बात तो सहज है ना आत्मा ही समझती है आत्माओं को बाप कहते हैं अब समझा कैसे तुमने सतयुग में रहती किया फिर कैसे सीढ़ी उतरे हो तो स्मृति दिलाते हम आत्माएं शांति धाम की निवासी और यहां आते हैं पाठ बजाने के लिए इस संगम ऊपर ही बाप आकर हमको सुदर्शन चक्र डाली बनाते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं कोई दूसरे युग में नहीं देते हैं इन्होंने फिर देवताओं को तीसरा नेत्र सुदर्शन चक्र दे दिया वास्तव में उनमें ये ज्ञान नहीं है बाप बैठ समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के थे परंतु धर्म भ्रष्ट होने के कारण देवता के बदले हिंदू धर्म समझ लिया रामानुसार ऐसे समझ लिया कहते हमारा दोष नहीं है। अरे तुम्हारा दोष नहीं है तो किसका दोष है? तुमने माया से हार खाया, पतित बने हो, अब फिर से पावन बन रहे। ऐसे कर्म करके तुम पतित बने हो, अब फिर बाप कर्माकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते। रावण का राज्य होने से कर्म विकर्म बन जाते और सत्युग में कर्माकर्म होते हैं। क्यों होते हैं? सत्युग में कर्माकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वहां देवताओं की आत्मिक स्थिति निरंतर बनी रहती है। आत्मिक स्थिति में जो भी कर्म होंगे वो अकर्म हो जाते हैं। और यहां तो तुमको कर्म जरूर करना ही है। कर्मों का कभी संन्यास नहीं होता है। वो सन्यासी तो खाना आना बनाना छोड़ देते हैं, समझते हम कर्म सन्यासी है, लेकिन पांव से चलना तो होता है, हाथों से खाना तो होता है, आंख से देखना तो होता है, कर्मेंद्रियों की कर्मधारा वगैरह कोई रह नहीं सकता। तो तुम बच्चों को भी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धियों के एक पाप में लगाना, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कर्म करते बुद्धियों के एक पाप में लगा रहे, आत्म की स्थिति बनी रहे। मनुष्य अनकांशस हो जाते तो कर्म नहीं चलता है, वो तो अल्पकाल के लिए। बच्चों को कर्म अकर्म की गति बैठ समझाते, वहां विकर्म नहीं होते, क्योंकि आत्मा देहभान में कभी नहीं आती। देहभान में आने से विपरीत कर्म होते हैं, वहां होता ही है रामराज्य। आधा कल्प है रामराज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। रावण मना अनेक सिरों का राज्य और राम मना एक सिर का राज्य, एक मत का राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते ही आते है, तो और कोई चीज नहीं जिसको वर्ष वर्ष जलाते हो। रावण को लंबा बनाते जाते हैं और वर्ष वर्ष जलाते जाते, हर वर्ष लंबा क्यों बनाते हैं? दस सिर का ही बनावेंगे लेकिन लंबा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य बढ़ता ही जाता है, उसकी ताकत बढ़ती ही जाती है, लेकिन फाउंडेशन कहां पड़ता है? ये संगम युग है जहां दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं आकर के नंबर वार ब्राह्मण बनती है। दूसरे धर्मों से वो श्रेष्ठ आत्माएं खींची जाती है, एक जैसे ब्राह्मण नहीं बन सकते। ऊंचे से ऊंचे धर्मों से जो आते हैं, जैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो उनमें तब्दील होने के संस्कार ज्यादा होते हैं, एक मत पर चलने के संस्कार होते हैं वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, और जो दूसरे दूसरे धर्मों में से खींच करके आत्माएं आती हैं, ब्राह्मण बनती है, वो अनेक मतों पर चलने की आदि हुई पड़ी, इसलिए अपने को चेंज नहीं कर सकती। अंत में चेंज तो सबको होना ही है, लेकिन टाइम लग जाता है। तो जो परिवर्तन नहीं कर सकती वो जबरन दूसरों को परिवर्तन करना चाहती, यहां तो बाप ने सिखाया है पहले अपना सुधार फिर पर का सुधार। हर वर्ष रावण बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ती जाती है। सनातन धर्म की आत्माएं छीन होती जाती है और दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है। इन बातों को कोई भी समझते नहीं है, जैसे कि बंदर बुद्धि है, कुछ भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में देखो कितने लाखों रुपए गवाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम करते ही आए, और खर्चा कितना करते हैं, कितनी देवियों आदि की मूर्तियां बनाते हैं, कितना खर्चा होता है। इसको कहा जाता है गुड़ियों का खेल। फाउंडेशन ब्राह्मण ही डालते हैं, जैसे जब तक तो मम्मा बाबा जीवित थे तो ये मेले मलाखड़े गुड़ियों के खेल नहीं होते थे। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आई हुई है, उन्होंने भक्ति मार्ग वालों की तरह फिर से वही आडंबर शुरू कर दिए। बाप कहते हैं इनमें वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी होता है, ये गुड़ियों का खेल है, बहुत खूबसूरत गुड़ियां बनाती। तो बाप समझाते हैं क्या क्या करते रहते हैं, मुसलमान लोग भी हसर निकालते थे, ताजिया कहा जाता है, फिर डुबो देते थे, अभी डुबोते नहीं है रख देते हैं। बंगाल की तरफ भी बहुत पूजा होती है, देवियों की पूजा करके फिर कहेंगे डूब जाओ, माना बाद में समझ में आता है कि सदगति एक से होनी है, इसलिए बाबा स्लोगन देते हैं, ये स्लोगन हर घर घर में टांग दो, एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। लेकिन 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, तो जो बाप के बच्चे बनते हैं वो भी इन बातों को भूल जाते हैं, फिर भी गुड़ियों के खेल में लग जाते हैं। पूजा करना फिर उनको डुबोना, देवियों को क्रिएट करके खिलाते हैं पिलाते हैं फिर खलास कर देते हैं, कितने पैसे वेस्ट करते। तो बाप कहते हैं तुमने कितना खर्चा किया है, इतना खर्चा करते हो और मंदिरों से भी चोर लूट करके ले जाते हो, तुम्हारे पास तो है ही क्या, जानते हैं ये सफेद पोस्ट आ रही है, कोई मंदिर आ रही है नहीं, पहले थोड़े चोर आए थे उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ मैनेजर की पेटी ले गए, उनमें से भी कपड़ों को देख करके फिर फेंक दिया। यहां से फिर गए तिलवाला मंदिर में, वहां तो पुलिस रहती है, पुलिस को देखा तो बोलो सब लोग भागे, सामान भी सारा वहीं छोड़ गए, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। ये उस समय की बात बताई जब मम्मा पापा मौजूद थे। और अभी तो और ही बैगरी पार्ट चल रहा है, एडवांस पार्टी में जो भी आत्माएं आती है कोई भी लखपति करोड़पति नहीं है, अगर है भी तो बाप कहते हैं ये सब बाप का है, अगर ऐसे समझ करके चलेगी तो तुम भी जैसे गरीब हो गए। अब तुम वो बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वहां तो धन दौलत आदि बहुत था, चोरी आदि की बात नहीं थी, ये चोरी आदि सब कुछ कराने वाला रावण है, कब से आता है, द्वापर से आता है, माने द्वैत फैलाने वाले धर्म जब से इस सृष्टि पर आए तब से ये चोरी चकारी आदि शुरू हो गई। जितने भी कुकर्म है विकर्म है वो कराने वाले यही अनेक मते देने वाले रावण रावण संप्रदाय, और इन सब की शूटिंग करने वाले हम ब्राह्मणों के अंदर। तो राम आकर के जो एक मत से राम राज्य स्थापन करते हैं वहां कोई चोरी आने की बात नहीं, अनेक मतों से जो रावण राज्य स्थापन होता है वहां चोरी चकारी आदि विकर्म बहुत होते रहते, वहां तो रावण होता नहीं। अभी तो देखो मनुष्य लंगूर बन गए, तो इन बंदरों की सेना बाबा ने ली है, इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है, तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, लड़ाई आ रही कोई बात नहीं, तुमको कोई लड़ाई आनी लड़नी नहीं, तुम हो ही पांडव संप्रदाय और वो है कौरव और यादव संप्रदाय, कौन जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण है वो सब है कौरव और यादव संप्रदाय, और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया, योग बल से लिया, ये प्रारब्ध कहां से पाई, जरूर लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में ऐसा कर्म करके ये प्रारब्ध पाई होगी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, आगे थोड़े ही तुमको कुछ मालूम था, समझते थे कलयुग अर्जुन बच्चा है फिर पुराना होगा, नीचे उतरते ही जाएंगे, तुम जानते हो बाप आया हुआ है और मनुष्य घोर अंधेरे में सोए पड़े। तो जो मनुष्य है घोर अंधेरे में सोए पड़े हैं वो ये गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, तुम्हारी कोई बात सुनते नहीं। तुम कहते हो एक बाप की मत पर चलो, वो मानते नहीं। बाप आया हुआ है एक मत देने के लिए, एक मत से राम राज्य स्थापन होता है, अनेक मतों से रावण राज्य बनता है। उनकी बुद्धि में बातें नहीं बैठती, सुनते ही नहीं। बाप समझाते हैं वो फिर सो जाते हैं। तो तुमने ये चित्र भी बनाया है कुंभकर्ण का, अज्ञान नींद की बात है, गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। अभी बाप बहन समझाते हैं, गीता पाठशाला में हमेशा अहम ऑब्जेक्ट अवश्य होती है, तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है क्या? नरसिंह नारायण जैसा देवता बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसी देवी बनना है। उन सत्संगों आदि में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, इन सत्संगों में सिर्फ बाहर की दुनिया के सत्संगों की बात नहीं है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, बी के नामधारी, उनका कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमें क्या बनना है। कह देते हैं नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, परंतु कब बनेंगे? तो भक्ति मार्ग में जैसे कहते आए कि अनेक जन्म पुरुषार्थ करेंगे, फिर कोई एक जन्म में नर से नारायण बन जाएंगे। लेकिन यहां तो बाप कहते हैं कि यही इसी जन्म में पढ़ाई पढ़नी है और यही ऑब्जेक्ट प्राप्त करनी है, अगले जन्म की बात नहीं है। तो तुम्हारी गीता पाठशाला में सच्ची बात है ऑब्जेक्ट की बताई जाती। भक्ति तो बहुत करते आए, वहां तो भगवान किसी को मिलता ही नहीं, कहते हैं कोई न कोई रूप में आवेंगे। तो ये देखो कितनी बड़ी भारी भूमिका हो जाती है, बाप को जानते हैं नहीं। तुम अब समझते हो हम आत्माएं बाबा से सुन रहे हैं, ये तुम समझते हो। और भक्तों की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि हम बाबा से सुन रहे हैं, इन्हें कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपनी कर्मेंद्रिया नहीं है, मैं तो आकर के कर्मेंद्रिया लेता हूं, कर्मेंद्रियों के बंधन में अगर मैं बंधू तो मेरे को भी अपनी कर्मेंद्रिया हूं। शिव सुप्रीम सोल कभी कर्मेंद्रियों के बंधन में बंधता नहीं, इसलिए उसको अपनी कर्मेंद्रिया नहीं, वो तो प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके गॉड फादर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, शक्ति का परिवर्तन करता है, वो तनधारी कर्मेंद्रियों के बंधन में आ सकता है। इसलिए बोला है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवाना आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि ये तो वो मूर्तियां हैं जो मनुष्य से देवता बनती। सुप्रीम सोल न देवता बनता है, न मनुष्य बनता है, न राक्षस बनता है, परमात्मा तो है बिंदी, उनकी पूजा कैसे करेंगे? कहते हैं शिव परमात्मा ने भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, यज्ञ रचते हैं तो फिर मिट्टी के लिंग बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाए देते हैं। क्यों बड़ा बनाए देते हैं? क्या बिंदी बड़ी होती है क्या? बिंदी आत्मा जैसे हमारी आत्मा बिंदु है, वैसे सुप्रीम सोल भी बिंदु है, तो भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? बड़े कार्य को दिखाने के लिए बड़ा लिंग दिखाई दिया, और देवताओं के अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं, उनके अनेक प्रकार के कर्मों की पूजा होती है, उनकी कर्मेंद्रियों की भी पूजा होती है। मुख कमल कहते हैं, नेत्र कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं, कि इन इन कर्मेंद्रियों से उन्होंने कमल फूल समान निर्लिप्त रह करके पाठ बजाया। लेकिन शिव को सिर्फ लिंग दिखाते हैं, और लिंग भी बड़ा बनाते हैं, माने लिंग से बहुत बड़ा पार्ट बजाए। आत्मा रूपी जो शालिग्राम है, उन्होंने छोटा पार्ट बजाया और लिंग को बड़ा पार्ट बजाने के लिए उन्हें बड़ा रूप दे दिया है। इन बातों को बाप ही सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, और कोई समझा नहीं सके, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं कहेंगे, हे आत्मा मैं तुम्हारा बाप हूं। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं ही बैठ परिचय देता हूं। तुम गाते हो परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सिर्फ परमपिता बीज रूप है या परमपिता परमात्मा बीज रूप है? मनुष्य सृष्टि का, जानवरों का नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों का नहीं बताया, किसका बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी मनुष्य ही होना चाहिए। सुप्रीम सोल कीट पशु पक्षी पतंगों का बीज रूप नहीं बताया, हां मनुष्य आत्मा पशु पक्षी कीट पतंगों जैसा पाठ बजा सकती है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, वास्तव में 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता, 84 लाख योनियों जैसे कर्म कर सकता है, करता है, और सुप्रीम सोल मनुष्य तन में प्रवेश करता है। जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है वो परम पाठधारी आत्मा है, लेकिन परम पिता नहीं है, सब पिताओं का पिता नहीं है। जो पिताओं के बीच में जिसकी सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम सोल है, वो आत्माओं के बीच में पिता है, परम पाठधारी, जिसको कहा जाता है वो है ही पाठधारी। तो तुम गाते हो परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। तो बाप की महिमा न्यारी है, बाप तुम बच्चों को बैठ आप समान बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। कौन से बाप की बात है? सुप्रीम सोल आप समान बनाते हैं, यह मनुष्य शक्ति का जो बीज है प्रजापिता, वो आप समान बनाता है। पहले सुप्रीम सोल पाप आत्माओं को आत्मा का परिचय दे करके आत्म की स्थिति में स्थित कराते हैं, वो है बेसिक नॉलेज। जब आत्माएं आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती है प्राइमरीली बेसिस पर, आत्मा की सारी कट उतरती है, तो सुप्रीम सोल बाप टीचर के रूप में फिर बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है और ज्ञान की वो गहराई बताता है जिससे मनुष्य से देवता बना जा सकता है। पहले मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों को टीचर के रूप में शिक्षा देकर के ब्राह्मण को देवता बनाया जाता है। तो बाप की महिमा है, वो बाप आकर के आप समान बनाते हैं। सुप्रीम सोल बाप भी आप समान ज्योति बिंदु बनाते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं वो पहले बाप समान बनता है। जो पहले बाप समान बनता है वही ब्रह्मा से देवता भी पहले बनता है। तो ये पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई है। इस योग में राग भरा हुआ है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहा जाता है कि ज्ञान मिलता है तो भक्ति के आडंबरों से वैराग्य आ जाता है। जितना जितना भक्ति के आडंबरों से वैराग्य होता जाएगा उतना समझो हमारी बुद्धि में ज्ञान गहराई तक बैठा हुआ है, ज्ञान से सदगति कही जाती है। शास्त्रों में भी लिखा है रहते ज्ञान अन्न मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार ज्ञान है और वो ज्ञान एक ही ईश्वर से आता है। भक्ति मार्ग के आडंबरों का ज्ञान अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। तो कह लेते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य, परंतु अर्थ का किसी को पता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं वैराग दो प्रकार के हैं, एक तो हठयोग का वैराग, उस हठयोग में देखो कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है। ये सन्यासी लोग बाहर विलायत में जाते हैं कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, शारीरिक क्रियाएं सिखलाते रहते हैं, प्राणायाम सिखलावेंगे, शरीर की योग आसन की क्रियाएं सिखलावेंगे, उनका नाम रख दिया राजयोग। बाप कहते हैं इसमें राज की क्या बात है, राजयोग तो तुम बच्चे सीख रहे हो कि कर्म करते कैसे बुद्धियों को एकाग्र किया जाए, एक ही याद में टिकाया जाए। जब एक ही याद में बुद्धियों को टिक जाता है तो कर्म इंद्रियां अपना भोग स्वीकार करना भूल जाती है, कर्म इंद्रियों से न पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो ये हुआ राजयोग, ये राज है जो कोई भी हठयोग गुरु हठयोगी गुरु नहीं समझा सके। तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो हठयोगी सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, उनका भी फाउंडेशन डालने वाले तुम ब्राह्मणों में से होते। उन ब्राह्मणों की बुद्धि में पहले पहले ये बात नहीं बैठती कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर ही भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया। वो समझ लेते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति है, अरे सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी, बेटी के साथ कोई प्रवृत्ति थोड़ी होती है। 14 साल की आई थी मम्मा, तो प्रवृत्ति की बात ही नहीं। और ब्रह्मा सरस्वती की शरीर छोड़ने के बाद जो राजयोग के नाम पर देश विदेश में योग सिखाए रहे हैं, वो खुद भी सन्यासी है। उनको पता ही नहीं है कि बाप ने घर कष्ट में रहते राजयोग सिखाया। इसलिए शास्त्रों में गाय है जगत पिता जगदम्बा, बाप भी है और जगदम्बा मां को क्रिएट करता है देवताओं की नई सृष्टि रचने के लिए। इसलिए जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग की गेट खुलते हैं और फिर माताएं सही होगी। तो ये राजयोग के द्वारा संभव है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारे माता पिता भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये बेहद की माता पिता है जो बताते हैं कि तुमको कोई देश आदि पहनने की मनाही नहीं है, रंगीन ड्रेस भी पहन सकते हो। हाँ, गृह में जब बैठते हैं तो एक ड्रेस में बैठना चाहिए। क्लास के टाइम पर ड्रेस एक होनी चाहिए, सफेद रंग सात्विक माना जाता है, होता भी सात्विक है। तो सात्विक स्टेज में रहने के लिए सूक्ष्म मतन जैसी स्थिति बनाने के लिए रंग ही नहीं खत्म होनी चाहिए। बाकी ड्रेस आदि पहनने की मनाही नहीं है। काम करते चलते फिरते कोई भी प्रकार की ड्रेस पहन, ये तो तुम बढ़ती में रहते थे, आगे की बात बताई। तो तुम सफेद पहनते थे, तो बाकी बात समझाते हैं, ड्रेस की बात अलग है। बाकी जेवर आदि मत पहनो, जेवर आदि पहनेंगे गुम हो जाएगा, चोर भी घूम लेते हैं। कोई कहेंगे ये जेवर आदि नहीं पहनते हैं, जरूर उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को दे दिया होगा। आजकल का जमाना बड़ा खराब है, छोटे छोटे गांव में बारात जाती है और चोरों को मालूम पड़ जाता है तो लूट मार कर देते हैं। पहले से ही सारी देखभाल कर लेते हैं, कभी कभी पकड़ भी जाते हैं। है ये दुखदान, सन्यासी खुद कहते हैं संसार में काज मिल का समान सुख है, इसलिए हमने ये सुख छोड़ दिया। पहले उन सन्यासियों में ताकत थी, जब ताकत थी तो जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहते हुए उनको सब कुछ मिलता था। अभी उनकी ताकत खलास हो गई है, प्योरिटी की पावर नहीं रही है, तो जंगलों को छोड़ करके अभी शहरों में घुस पड़े। ये सारी शूटिंग भक्ति मार्ग के सन्यासियों की हम ब्राह्मणों के द्वारा भी की जाती और की जाएगी। पहले जंगल में रहते थे, बाद में शहरों में निकल पड़े हैं, आवश्यकताएं ज्यादा हो गई है, गृहस्थियों से भी जाति आरंभ रोका हो गया। तो वो ताकत नहीं गई, भीख मांगते रहते हैं, इसलिए ताकत नहीं है, धक्के खाते रहते हैं। नई दुनिया में तो तुम्हारी प्रकृति दास ही हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सात्विक बन जाती है। आत्मा जब सात्विक बनती है तो प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती है, कोई भी काम करने की दरकार नहीं रहती, खाना पीना खेलना मौज करना। तो नई दुनिया में तुम्हारी प्रकृति दास ही रहती है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। तो बाबा ने समझाया, सवेरे उठ करके यहां आए करके बैठो, यहां का वायुमंडल शुद्ध है, तुमने यहां ही राजयोग सीखा है और तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर जो यादगार है या जो भी यादगार बनते हैं वो संपूर्ण स्टेज के बनते हैं या अधूरी स्टेज के बनते हैं? जब संपूर्ण स्टेज होती है तो यादगार कायम होती है। तो जिस समय ये वाणी चलाएगी इस 66 में, उस समय की बात लागू होती है क्या कि तुम्हारा यादगार ये दरबार मंदिर है? उस समय तो अधूरी स्टेज थी और बाप तो इमर्ज करके बच्चों से बोलते हैं। जिन बच्चों से इमर्ज करके बोल रहे थे ब्रह्मा के तन में, वो बच्चे उस समय मौजूद नहीं थे वहां। इमर्ज करके बोलने की बात अलग है, वो एडवांस पार्टी के बच्चे यदि में आठ में थे, बाद में शरीर छोड़ करके चले गए। बाप तो आत्माओं से बात करते हैं, देहधारियों को देख करके तो बात करते नहीं। तो ब्रह्मा के तन में ये जो बात बोली गई है वो उस समय हाल में बैठे हुए बच्चों के लिए नहीं बोली गई, ये वास्तव में भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली एडवांस पार्टी के उन बच्चों के लिए बोली गई जो यज्ञ के आज में फाउंडेशन डाल करके गए थे। वही आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा बाप के चरित्रों को नहीं देखा, ब्रह्मा के चरित्रों में उनकी आसक्ति नहीं हुई। उनकी आसक्ति तो जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, जो यज्ञ की आज में था उसी में थी, और जब वो चला गया तो उसके जाने के बाद वो बच्चे भी चले गए, वो आत्मा दोबारा यज्ञ में आती है, अपने ब्राह्मण पने की प्रारब्ध लेकर के आती है और लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाती है। तो तुम बच्चे अभी समझते हो बाबा से हम अपना राजभाग ले रहे हैं, आधा कल पर राजी करेंगे फिर हम ही राजी गवावेंगे, और हमारे से राज्य छीनने वाले कौन होंगे? यही कौरव यादव संपट है जो यहां शूटिंग पीरियड में हमारे से छीनते हैं, वो वहां भी भारतवासियों को धोखा देकर के जावेंगे, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाप की वाणी को छोड़ करके भक्ति मार्ग के आरंभ पर अपनावेंगे, हम तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, अभी हम पुजारी से पूज्य बन गए, फिर आधा कल बाद पुजारी बनेंगे तो हमको फिर देवी देवता थोड़े ही कहा जाएगा। सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। बाबा, रावण ने हमको बिल्कुल ही मूर्ख बना दिया। हमारी सारी कली कला काया चट कर दी। अभी बाबा आप तो हमको सिरताज बनाने आए हो। सारी दुनिया के सिर के तुम ताज बनते हो। तुम्हारी याद इतनी तीखी है कि याद से ही विकर्म विनाश हो जाते। तुमको खुशी भी बहुत होगी क्योंकि याद के फोर्स से तुम वायुमंडल को शुद्ध बनाए देते हो। तुम ब्राह्मण ही बनाते हो, वो अधूरे ब्राह्मण नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि बाबा ने मुरली में मना किया था, इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखने है। अगर इनका चित्र रखेंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी। इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, ये अधूरा रूप है। अधूरे रूप में ही उन्होंने शरीर छोड़ा, इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के चित्र नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती और पूजा भी नहीं होती। पूजा तो संपन्न स्वरूप की होती है। संपन्न स्वरूप है ही विष्णु और शंकर, तो तीन मूर्तियों में से दो मूर्तियों की पूजा होती है, एक मूर्ति ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। वही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है क्योंकि जरूर कोई पूजने योग्य कर्म की है, ऐसी पवित्रता धारण की है जो माताओं के लिए गए नहीं, कि माताओं ने सहन करके स्वर्ग के गेट खोले, पुरुषों के लिए नहीं कहा कि स्वर्ग के गेट खोले। पांडवों के लिए तो सिर्फ इतना गायन किया है कि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर के गल मरे, उन्होंने अपने देवान को गलाई दिया, लेकिन स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त नहीं बन पाते। अभी बाप तुमको सिर का ताज बनाते, तो ऐसी याद में टिकना चाहिए। कैसी याद में? जिस याद में तथाकथित ब्राह्मण नहीं टिक पाते, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं टिक पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ब्रह्मा के चित्र और ब्रह्मा की याद टिकी हुई है। उन्होंने इसको अधूरे रूप से पालना ली है। जिस अधूरे रूप से पालना ली जाती है तो वो याद भी आता है। तुमने न साकार से पालना ली न तुमको याद आता है। तुम्हारी बुद्धि में एक सुप्रीम सोल बैठता है। सुप्रीम सोल यज्ञ के आदि के उसी व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं, अपना कार्य करता है जो आदि में बीजारोपण करने वाला होता है। मैं मनुष्य शक्ति का पिता हूं, तो मनुष्य शक्ति का पिता जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो यज्ञ के आदि में तुम्हारी नजरों के सामने हीरो था। तुमने उसे पहचाना तो जो उसे हीरो पार्क हीरा को पहचानते हैं वो आत्माएं भी अगले जन्म में आकर के हीरा पाट बजाती है, हीरा चमक मारता है, हीरे में वो ज्ञान की रोशनी होती है, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान की रोशनी टिकती है, क्योंकि तुम कोई देहधारी को याद नहीं करते हो, वो देहधारी की याद में टिकते हैं, उनकी अंतमते जो गति भी वैसी ही होती है, जिस देहधारी को याद करते हैं, ऐसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा को याद करते हैं, तो ब्रह्मा की जैसे अकाल मौत हुई तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी अकाल मौत होती जाती है। तुम तो बीजरूप स्टेज में टिकने वाले, जो बीजरूप स्टेज में टिकने वाले हैं वो तो सब बीज रूप जो आत्माएं हैं उनके जो पिता के स्वरूप की यादगार में शिवलिंग में आज से ही आसक्त रहे हैं। शैव पूजा भारत की प्राचीन परंपरा की पूजा रही, शिव भक्त रहे, और शिव भक्तों को शिव स्वरूप में टिकना कोई कठिन नहीं मालूम होता, शिव नेत्र कहा जाता है। तुम त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे हो, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण तुम्हारे अंदर ज्ञान की वो पराकाष्ठा जल्दी बैठ जाती है, तो ऐसी स्टेज में जो टिकने वाले बच्चे हैं उनके पाप कर्म भी जल्दी दग्ध हो जाते हैं, विकर्म भस्म होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, सवेरे उठने की डायरेक्शन मिलती है, तुमको कोई कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कह देते हैं, अब तुम्हारा असली नाम तो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा भोजन अर्थात ब्राह्मणों का शुद्ध भोजन, ऐसे नहीं कि भोग लगाया जाएगा तभी शुद्ध भोजन बनेगा, नहीं, याद में बनाया हुआ और याद में खाया हुआ शुद्ध भोजन कहा जाता है, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। उस ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी पसंद करते हैं, देवताएं अभी हैं कहां जो पसंद करेंगे, हैं? अभी जो ब्रह्मा भोजन हम बनाते हैं पाप की याद में रह करके, वो ब्रह्मा भोजन को देवताएं कैसे पसंद करेंगे, देवताएं तो सत्यगुरु होंगे, हाँ देवता बनने वाली जैसे कृष्ण की सोल है, वो कृष्ण की सोल अभी सूक्ष्म बतनवासी, जब बीज रूप स्टेज पकड़ती है तो हम बच्चों में प्रवेश करती है, उस समय वो देवत्व का पार्ट बजाती है, तो वो आत्मा हमारे बनाए हुए भोजन को पसंद करती, उस तरह की कैटेगरी की जो भी आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर छोड़ करके जा रही है वो इस भोजन को बहुत पसंद करती, जो देहदारी की याद में रह करके भोजन बनाते हैं वो भोजन उनको पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है जहां 36 प्रकार के भोग मिलते हैं वहां मैं आता ही नहीं हूं, जहां बच्चों को रोटी भी नसीब नहीं होती मैं वहां उन बच्चों के नजदीक आता हूं, बड़े प्यार से आकर के उनको समझाता हूं। तो जो सुप्रीम सोल पाप है वो ही उस जगह को त्याग देता है जहां देहधारी की आग में भोजन बनाया जाता है। बाप को कहते हैं अभी निराकारी भक्त, निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे, निर्हंकारी बनेंगे, देह का भी कोई होना नहीं रहेगा। तो तुम बच्चे समझते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से भोजन खाते। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग, तुम बच्चे अभी पियर घर में हो, ससुर घर है बैकुंठ विष्णु का घर, बैकुंठ का हो पैराडाइज का हो जन्नत कहो, शास्त्रों में इसका गाइड है। सतयुग में जो देवताएं होंगे वो अलग, वो तो सोलह कला संपूर्ण होंगे लेकिन वो उतरती कला वाले होंगे। और बैकुंठ या जन्नत में जो देवताएं होते हैं, जो ब्राह्मण स्व देवता बनते हैं, वो है चढ़ती कला वाले, तो वो विष्णु का कुल है। बैकुंठ है वो है तुम्हारा ससुर घर, और ये है ब्रह्मा का पियरगढ़, पियरगढ़ पिय कहते हैं पियू माना बाप, प्रजापिता का घर। ब्रह्मा भी बाप है क्योंकि उसे टाइटल मिलता है, टाइटलधारी बाप तो है ही, और सिद्धू भी बाप है। तो विष्णु है तुम्हारा ससुर घर, तुमको कोई जेवर आग से नहीं ज्ञान और योग से श्रृंगारते। ये ज्ञान रतन एक एक लाख रुपए का है, ये ज्ञान रतन ही आगे चल करके स्थूल रतन बन जाएंगे। जिनमें जिनमें ज्ञान होगा उन ज्ञानियों की आगे चल करके दुनिया में बड़ी ऊंची दृष्टि से आव भगत होगी, जिनमें ज्ञान नहीं होगा वो दूसरों से भीख मांगते रहे। इसलिए मुर्गी में बोला है मुसलमान भीख मांगेंगे, अब वो चाहे बाहर की दुनिया के मुसलमान हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के वो मुसलमान हो, जो आगे चलकर ये द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अभी भी ज्ञान नहीं सुनते हैं। अभी भी उनको सुनाओ तो कान में उंगली देके कहेंगे अल्लाह अकबर, शिव बाबा को याद करो, हमें किसी की बात नहीं सुननी। बाप कहते हैं इस तरह जो तिरस्कार करते हैं ईश्वरीय ज्ञान का, उनको फिर आगे चल करके ऐसा टाइम आएगा कि ईश्वरीय ज्ञान रत्न की भीख मांगनी पड़ेगी। तो बाबा ने समझाया तुम बच्चे हो रूप बसंत, याद से तुम्हारा चेहरा चमक जाता है, रूपवान बन जाते हो, और ज्ञान से तुम्हारे अंदर खुशबू आ जाती। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए, अंदर अंदर में वो खुशी स्थायी रहनी चाहिए, बाहर में नहीं। ये सारी अंदर की बात है, अंदर की खुशी बाहर भी झलकती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।